एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो आपको हंसाएगा भी और शायद थोड़ा थोड़ा बेचैन भी कर देगा।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं एवलिन वॉ के 1934 में छपे उपन्यास अ हैंडफुल ऑफ डस्ट की, एक क्लासिक।
एवलिन वॉ मतलब 20वीं सदी के इंग्लैंड के वो मशहूर व्यंग्यकार,
बिल्कुल,
जिनकी कलम बड़ी कह सकते हैं निर्ममता से चलती थी, समाज के दोहरेपन पर, खोखलेपन पर।
हाँ, और खासकर जो उच्च वर्ग था वो तो हमेशा उनके निशाने पर रहता था।
बिल्कुल, और अ हैंडफुल ऑफ डस्ट को उनके लेखन में एक अहम मोड़ भी माना जाता है।
अच्छा, कैसे?
मतलब जहां उनकी शुरुआती किताबों में हल्का फुल्का मजाक ज्यादा था, वहीं यहां वो एक गहरी, जिसे ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं, उसकी तरफ मुड़ते हैं।
हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है, और दिलचस्प बात यह है कि इसका टाइटल वो टी.एस. एलियट की मशहूर कविता है ना, द वेस्टलैंड,
हाँ,
उसकी एक पंक्ति से लिया गया है, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट।
मैं तुम्हें मुट्ठी भर धूल में डर दिखाऊंगा, ये लाइन ही मतलब उपन्यास के पूरे मिजाज का अंदाजा दे देती है।
क्या मतलब? जैसे कि
आध्यात्मिक खालीपन, परंपराओं का टूटना, जो आधुनिक जीवन की अर्थहीनता है, उसकी तरफ इशारा।
और ये भी कहते हैं कि वॉ की अपनी निजी जिंदगी के जो अनुभव थे,
हाँ,
उनका तलाक, फिर कैथोलिक धर्म अपनाना, वो सब भी कहीं ना कहीं इसमें झलकता है।
हाँ, ऐसा माना जाता है विश्वासघात, नैतिक पतन, एक तरह की रूहानी वीरानगी, वो सब परतें इसमें दिखती हैं।
सही का। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस उपन्यास की कहानी को, उसके किरदारों के उतार चढ़ाव को और जो गहरे संदेश हैं, उन्हें थोड़ा परत दर परत खोलें।
बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं।
शुरुआत करते हैं कहानी के केंद्र से, हेट नेबी। वो शानदार तो है, पर अब कुछ पुरानी सी पड़ती, विक्टोरियन हवेली इंग्लैंड के देहात में।
हेटन एबी, हाँ, वो सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो उपन्यास का जो हीरो है टोनी लास्ट, उसकी पूरी दुनिया है।
टोनी लास्ट, हाँ, उसके बारे में बताएं थोड़ा।
टोनी एक भला आदमी है, सीधा साधा जमींदार, पुरानी अंग्रेजी रईसी और उसकी जो परंपराएं हैं उनमें जीता है वो, और उसे अपनी इस पुरखों की हवेली से मतलब बेपनाह मोहब्बत है, शायद जरूरत से ज्यादा ही।
और मुझे लगता है यहीं से उपन्यास का जो मुख्य संघर्ष है वो उभरता है।
हाँ बिल्कुल,
एक तरफ टोनी है जो हेटने भी परंपरा, कर्तव्य, सम्मान, इन सब के साथ जी रहा है, और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी लेडी ब्रेंडा, जो बिल्कुल आधुनिक है, सतही है
जी,
और बस अपनी खुशी, अपनी उत्तेजना की तलाश में है।
सही, उनका रिश्ता जैसे 1930s के दशक के इंग्लैंड में जो बड़ा सांस्कृतिक बदलाव आ रहा था,
हाँ,
उसका एक छोटा सा आईना बन जाता है परंपरा और आधुनिकता की वो टकराहट।
तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी दुनिया में जहां पुराने नैतिक मूल्य जैसे ढह रहे हों, टोनी जैसी सीधी साधी अच्छाई क्या वो टिक सकती है?
टोनी की यात्रा तो जैसे एक आरामदायक ख्वाब से शुरू होती है और एक भयानक हकीकत पर जाकर खत्म होती है।
मासूमियत की कीमत चुकानी पड़ती है उसे, है ना?
हाँ, और ब्रेंडा उसके लिए हास्टन की शांत जिंदगी, पति का भोलापन, ये सब बस उबाऊ है, बोरिंग।
उसे तो लंदन की चमक दमक चाहिए।
बिल्कुल, और वहां उसे मिलता है जॉन बीवर, एक ऐसा किरदार जो शायद उस दौर के खोखलेपन का प्रतीक है।
जॉन बीवर, हाँ, उसके बारे में क्या खास है?
कुछ खास नहीं है, यही खास बात है, ना उसमें कोई चार्म है, ना कोई अक्ल, बस वो मौके का फायदा उठाना जानता है, सामाजिक पर्वतारोही कह लीजिए।
अच्छा,
वो ब्रेंडा का प्रेमी बनता है, लेकिन उनके रिश्ते में भी जुनून कम और मतलब स्वार्थ ज्यादा नजर आता है।
और फिर उनका एक बेटा भी है, जॉन एंड्रू।
हाँ, जॉन एंड्रू, जो शुरू में एक उम्मीद की किरण जैसा लगता है, हास्टन का भविष्य।
ये किरदार काफी उलझे हुए लगते हैं। टोनी लास्ट को ही लें, उसे साहित्य के सबसे दुखद, त्रासद पात्रों में से एक क्यों मानते हैं?
शायद इसलिए कि उसकी अच्छाई ही उसकी दुश्मन बन जाती है। वो एक शरीफ आदमी है, वफादार पति है, हेटन एबी को अपनी जान से ज्यादा चाहता है, उसके लिए वो सिर्फ घर नहीं, एक पवित्र स्थान है, उसकी पहचान है। वो ब्रेंडा पर आंख बंद करके भरोसा करता है, उसकी बदलती चाहतों को वो समझ ही नहीं पाता, उसमें एक तरह का, क्या कहें, रोमानी भोलापन है।
और यही भोलापन उसे आने वाले खतरे से जैसे बेखबर रखता है।
बिल्कुल, और यही उसे धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाता है। पहले उसकी शादी का भ्रम टूटता है, फिर बेटे की मौत का सदमा, और आखिर में जिन उसूलों पर वो यकीन करता था वो भी बेमानी लगने लगते हैं।
उसका अमेरिकन जंगल में भाग जाना वो भी तो इसी का नतीजा है, जैसे एक ऐसी दुनिया से भागना जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा।
हाँ, एक निराशा भरी उड़ान।
तो क्या ये कह सकते हैं कि उसकी शराफत ही उसकी कमजोरी थी?
ये एक बड़ा सवाल है जो उपन्यास छोड़ जाता है। और इस पूरी त्रासदी को हवा कौन देती है?
लेडी ब्रेंडा।
ब्रेंडा,
हाँ,
उसके बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ स्वार्थी या कुछ और भी?
स्वार्थी तो है ही, पर उसके अंदर एक अजीब सी शून्यता है, एक लापरवाही भरी क्रूरता। हेटन की एकरसता से ऊबकर वो लंदन में रोमांच ढूंढती है।
बीवर के साथ उसका रिश्ता भी, क्या वो सच में प्यार था?
मुझे नहीं लगता, शायद बोरियत मिटाने का एक जरिया ज्यादा था। उसकी सबसे बड़ी कमी शायद ये है कि वो टोनी के जज्बात को, हेटन के लिए उसके लगाव को समझ ही नहीं पाती, या शायद समझना ही नहीं चाहती।
उसकी भावनात्मक निरक्षरता कह सकते हैं इसे।
हाँ, अच्छा शब्द है, इमोशनल इलिटरेसी।
और उसका सफर वो नैतिक पतन की ओर ही जाता है।
और सबसे भयानक क्षण तो वो है जब उसे फोन पर खबर मिलती है कि जॉन मर गया है।
ओह हाँ।
और वो एक पल को सोचती है कि उसका प्रेमी जॉन बीवर है, और उसके मुंह से निकलता है, ओह थैंक गॉड।
हे भगवान, शुक्र है। ये शायद उपन्यास का सबसे ठंडा, सबसे क्रूर मोमेंट है, जहां मानवीय संवेदना जैसे पूरी तरह मर जाती है।
तो क्या ब्रेंडा सिर्फ एक विलन है, या वोगी अपने समय और समाज के उस खोखलेपन की शिकार है? आप क्या सोचते हैं?
ये मुश्किल सवाल है। वो यकीनन अपने कामों के लिए जिम्मेदार है, पर शायद वॉन ये भी दिखा रहे हैं कि उस समाज में रिश्तों और भावनाओं की कद्र ही नहीं बची थी। अंत में ब्रेंडा भी तो सामाजिक हाशिए पर पहुंच जाती है, एक बेमेल बिना प्यार की शादी में फंसी हुई।
और जॉन बीवर, उसका क्या होता है?
जॉन बीवर, वो तो जैसे बिना रीढ़ का आदमी है, एक सामाजिक परजीवी, दूसरों के सहारे जीने वाला। जब उसे लगता है कि ब्रेंडा से अब कोई फायदा नहीं, तो वो बड़ी आसानी से उसे छोड़ देता है बिना सोचे समझे।
फिर है जॉन एंड्रयू, उनका बेटा।
हाँ, जॉन एंड्रयू हेंटन के भविष्य का प्रतीक, वंश का प्रतीक, लेकिन एक शिकार के दौरान घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो जाती है।
कहानी का एक बेहद क्रूर मोड़ है ये।
हाँ, जैसे बड़ों की लापरवाही और खुदगर्जी की कीमत मासूमियत को चुकानी पड़ती है, ये दिखाता है।
और फिर आखिर में आता है मिस्टर टॉड।
मिस्टर टॉड, हाँ, अमेज़न के जंगल में रहने वाला एक अनपढ़ रहस्यमयी अंग्रेज।
वो टोनी को बचाता है, लेकिन
फिर उसे हमेशा के लिए अपना कैदी बना लेता है, सिर्फ इसलिए कि टोनी उसे चार्ल्स डिकिन्स के उपन्यास पढ़कर सुना सके।
ये किरदार क्या दिखाता है? क्या वो सिर्फ जंगल की बर्बरता है या कुछ और?
या शायद वो सभ्यता के नीचे छिपी असलियत है। सोचिए, वो आदमी जो सभ्यता की सबसे बड़ी देन, साहित्य का लुत्फ उठा रहा है।
हाँ।
उसी सभ्यता के एक प्रतिनिधि को कैद करके।
ये टोनी की यात्रा का सबसे भयानक, सबसे बेतुका अंत है, मतलब अर्थहीनता की हद।
अच्छा, चलिए अब कहानी के घटनाक्रम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला हिस्सा, घर और दरारों की शुरुआत।
हाँ।
शुरुआत में हेटन में सब ठीक लगता है। टोनी अपने गॉथिक कमरों पर नाज करता है, जिनके नाम उसने किंग आर्थर की कहानियों के पात्रों पर रखे हैं। पर ब्रेंडा की बेचैनी साफ है, वो लंदन में फ्लैट लेती है, बहाना इकोनॉमिक्स पढ़ने का,
लेकिन असल मकसद जॉन बीवर से मिलना।
बिल्कुल, और टोनी बेचारा अनजान है। फिर हैटन में एक वीकेंड पार्टी होती है, जहां तनाव हवा में महसूस होता है, माहौल बोझिल है,
और तभी वो फोन कॉल आती है, जॉन एंड्रयू की मौत की खबर।
हाँ, और ब्रेंडा की वो प्रतिक्रिया, ओह थैंक गॉड। ये सिर्फ एक माँ का दुख नहीं है, ये उस समाज के नैतिक पतन का एक चरम बिंदु है, दिखाता है कि रिश्ते कितने खोखले हो चुके हैं।
सही कहा। फिर आता है दूसरा हिस्सा, विघटन, रिश्ते बिखरते हैं।
बेटे के जाने के बाद टोनी और ब्रेंडा के बीच की खाई और चौड़ी हो जाती है ना?
हाँ, ब्रेंडा तलाक चाहती है ताकि बीवर से शादी कर सके। टोनी पहले तो एक शरीफ आदमी की तरह पीछे हटने को तैयार हो जाता है, अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करता। लेकिन पेच तब फंसता है जो ब्रेंडा के वकील गुजारा भत्ता मांगते हैं।
हाँ, और वो भी इतना भारी कि टोनी को हैटन बेचना पड़ जाए।
और यही टोनी टूट जाता है। हिबर्टन उसके लिए सिर्फ जायदाद नहीं, उसकी पहचान है, उसका अस्तित्व है।
वो कहता है एक आदमी का अपने घर पर हक होता है ना, ये उसका है ना, मैं उन्हें यहाँ नहीं रखूंगा।
ये टोनी का टर्निंग पॉइंट है जहाँ उसकी शराफत की सीमा आ जाती है। वो सहयोग करने से मना कर देता है और विदेश चला जाता है।
ब्रेंडा बीच में लटक जाती है, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी।
और फिर तीसरा हिस्सा शुरू होता है टोनी की अमेजिंग यात्रा, एक खोए हुए शहर की खोज।
हाँ, वो एक सन की खोज करता है, डॉक्टर मैसिंगर उसके साथ निकल पड़ता है। ये यात्रा शुरू से ही अजीब और खतरनाक लगती है।
जंगल में टोनी बीमार पड़ जाता है।
हाँ, बुरी तरह। मैसिंगर मदद लाने जाता है और डूब जाता है।
टोनी अकेला रह जाता है मरने के कगार पर।
और यही एंट्री होती है मिस्टर टॉड की। वो उसे ढूंढता है, बचाता है, टोनी ठीक होने पर उसे डिकिन्स पढ़कर सुनाता है।
सब कुछ जैसे पटरी पर आ रहा लगता है तभी टोनी के परिवार का भेजा हुआ बचाव दल पहुंचता है।
और यही मिस्टर टॉड अपना असली रंग दिखाता है। वो बचाव दल से झूठ बोलता है, कहता है टोनी मर चुका है।
और सबूत के तौर पे टोनी की घड़ी उन्हें दे देता है।
हाँ, और जैसे ही वो नाव आंखों से ओझल होती है, टोनी को एहसास होता है कि वो बचाया नहीं गया, वो हमेशा के लिए कैद हो गया है।
कितना कितना भयानक है ये, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं बचती।
बिल्कुल। और उपसंहार वो कहानी को एक साल आगे ले जाता है।
इंग्लैंड में टोनी को मृत मान लिया गया है।
हाँ, और हेटने भी वो उसके दूर के रिश्तेदारों को मिल गया है और उन्होंने उसे सिल्वर फॉक्स फार्म में बदल दिया है, मतलब लोमड़ी पालने का फार्म।
परंपरा पर व्यापार की जीत।
बिल्कुल। ब्रेंडा ने भी एक अमीर लेकिन उबाऊ आदमी जॉक ग्रांट मेंजीज उससे शादी कर ली है और गुमनामी में जी रही है।
और टोनी, उसकी आखिरी तस्वीर क्या है?
आखिरी तस्वीर टोनी लास्ट अमेज़न के जंगल में स्वस्थ है पर कैदी है। मिस्टर टॉड को कभी न खत्म होने वाली डिकिन्स की कहानियां सुना रहा है। उसने अपना खोया हुआ शहर पा लिया है, मगर वो शहर उसके दिमाग की जेल है जहां उसकी अपनी संस्कृति, उसका अपना साहित्य उसके पिंजरे की सलाखें बन गया है।
जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है, वैसे ही टोनी की जिंदगी का अर्थ, उम्मीद सब फिसल गया है।
हाँ, बिल्कुल यही भाव है।
वॉन ने यहाँ पारंपरिक मूल्यों के पतन को बड़ी गहराई से दिखाया है, है ना? हेल्टी नेबी की वो भारी शान और उसके अंदर रहने वालों का नैतिक खोखलापन।
हाँ, एक कड़वा सच। सभ्यता सिर्फ इमारतों से नहीं टिकती, उसके लिए नैतिक रीढ़ भी चाहिए।
और प्यार और शादी, उनका क्या हश्र होता इस दुनिया में। टोनी के लिए शादी एक पवित्र बंधन थी
और ब्रेंडा के लिए बस एक सहूलियत, एक समझौता। वो जैसे कह रहे हो कि स्वार्थ की नींव पे टिके रिश्ते रेत के घरौंदे होते हैं, टिक नहीं सकते।
वो है टोनी की अच्छाई का हश्र, उसकी शराफत, वफादारी, भरोसा, इन सबका लगातार फायदा उठाया जाता है। क्या ऐसी दुनिया में नेकी का कोई मोल नहीं? वॉट्स का जवाब तो काफी निराशाजनक लगता है।
हाँ, लगता तो है।
और वो सामाजिक परजीवी जॉन बीवर जैसे लोग जो बिना कुछ दिए बस फायदा उठाते हैं, ये उस दौर के समाज पर एक तीखा कटाक्ष है। पारंपरिक वर्ग संरचना और आधुनिक अवसरवाद का टकराव भी है।
उपन्यास आधुनिक जीवन की अर्थहीनता पर भी सवाल उठाता है। ब्रेंडा की बोरियत, वो रोमांच की तलाश, ये सब एक गहरे आध्यात्मिक खालीपन की ओर इशारा करते हैं, नहीं?
बिल्कुल। जब पुराने सहारे, कर्तव्य, परिवार, विश्वास, ये सब टूट जाते हैं तो लोग शायद भटक जाते हैं अस्तित्व के उस शून्य को भरने की एक हताश कोशिश।
निर्वासन का भाव भी बहुत प्रबल है इसमें।
हाँ, टोनी तो शारीरिक रूप से निर्वासित हो ही जाता है, पर ब्रेंडा भी भावनात्मक रूप से अकेली और भटकी हुई है।
और वो तुलना लंदन की महफिलों की भावनात्मक क्रूरता और अमेज़न के जंगल की शाब्दिक बर्बरता,
जैसे दोनों में कोई खास फर्क ना हो। सभ्यता का लिबास कितना पतला है।
यही बात है।
वॉक की लिखने की शैली भी कमाल की है। वो भयानक से भयानक घटनाओं का जिक्र भी एक अजीब सी तटस्थता से करते हैं, एक भावनात्मक दूरी बनाकर।
हाँ, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टोन। इससे वो घटनाएं और ज्यादा चौंकाने वाली लगती हैं, उनका प्रभाव बढ़ जाता है।
और विडम्बना, आयरन, क्रूर विडम्बना कहानी में हर जगह बिखरी पड़ी है।
हाँ, स्थितिजन्य, नाटकीय, यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय विडम्बना भी।
टोनी का डिकिन्स पाना, जो पहले संस्कृति का प्रतीक था, अब उसकी यातना का जरिया बन गया है। ये डार्क कॉमेडी है, ऐसी हंसी जो अंदर तक सहरा दे।
प्रतीक भी बहुत सशक्त हैं। हेटन एबी, वो ढहती हुई परंपरा, जंगल सभ्यता के नीचे छिपी बर्बरता, डिकिन्स के उपन्यास, पहले संस्कृति फिर यातना,
और वो किरदारों का विरोधाभास, सतह पर कुछ, अंदर कुछ और। लंदन का फ्लैट बनाम हिटन की हवेली, परिष्कृत पार्टियां बनाम अंदरूनी शोषण।
कुछ संवाद तो ऐसे हैं जो सीधे दिल पर लगते हैं, जैसे ब्रेंडा का वो ओ थैंक गॉड। हाँ, या टोनी का हेटन को बचाने का वो दृढ़ निश्चय, एक आदमी का अपने घर पर हक होता है,
या फिर मिस्टर टॉड का वो झूठ जो टोनी की किस्मत तय कर देता है, घड़ी वाला सीन।
सही, ब्रह्मांडीय उदासीनता का प्रतीक।
इस उपन्यास को पढ़ के एक बेचैनी सी रह जाती है। नहीं, शुरुआत में शायद किरदारों की नादानियों पर हंसी आए, लेकिन धीरे धीरे कहानी एक अंधेरे नाउम्मीद सपने जैसी लगने लगती है।
हाँ, एक तरह का अन्याय महसूस होता है, लगता है टोनी की सजा उसकी गलतियों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये पाठक को नैतिकता पर, भाग्य पर, जीवन के अर्थ पर सोचने को मजबूर करता है।
क्या समाज खुद एक जंगल है जहां बस टिके रहने की होड़ है? क्या सभ्यता सिर्फ एक भ्रम है?
ये सवाल जहन में घूमते रहते हैं,
और इसीलिए शायद अ हैंडफुल ऑफ डस्ट आज भी इतना प्रासंगिक है। ये सिर्फ गुजरे जमाने का व्यंग्य नहीं है, ये मानवीय कमजोरियों, नैतिक अंधेपन और सभ्यता के असली मायने पर एक कालातीत सवाल है।
बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि मूल्य सिर्फ कहने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने और उनके लिए कीमत चुकाने की जरूरत होती है, वरना सब कुछ मुट्ठी भर धूल में मिल जाता है।
सही कहा, एक गहरा चिंतन।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।